नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा मैया जमुना मैया की जय, इस्कॉन मीरारोड की जय, श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, गंगा मैया जमुना मैया की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ दशम स्कंद अध्याय 6 पुतनावद्ध, इस अध्याय के 13 नंबर श्लोक। निशाचरी इत्थम यथितस्तना व्यसु व्यादाय केशा च चरणौ भुजौ अपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतः वित्रः इव अपतत् नृपः निशाचरित्थं व्यतिस्तस्तनाभ्यसु व्यादाय केशान् शरणौ भुजावपि प्रसाद्य गोष्ठे निजरूपमस्थिता वज्राहत वित्रैवापतन्निपः निशाचरित्तं व्यथितस्तनाभ्यसु वादाय केशान् शरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमस्थिता वज्राहतो वित्रः इवापतत्निपः निशाचरित्थं व्यथितस्तनाभ्यसु व्यादाय केशान् शरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहत वित्रः इवापतत्निपः
Sariyam
शब्दार्थ निशाचरी राक्षसिने इत्थम इस तरह व्यथित स्तना स्तन पर दबाव पड़ने से दुखी व्यसुहु प्राण छोड़ दिया व्यादाय मुंह फैलाकर केशान बालों का गुच्छा चरणों दोनों पांव भुजऊ दोनों हाथ अपि भी प्रसार्य फैलाकर गोष्ठे गोचर में निज रूपमा स्थिता अपने मूल आसुरी रूप में स्थित वज्राहत इंद्र के वज्र से मरा हुआ वृत्र वृत्रासु इव सदृश अपतत गिर पड़ी नृपः हे राजन। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पुतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़े। मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिरा हो। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पुतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिरा हो। तात्पर्य, पुतना महान राक्षसी थी जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञान थी, किंतु जब वह मर गई तो उसकी योग शक्ति उसे छिपा न पाई जिससे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। ओम अज्ञानात् निरामयस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप तदामयं ददाति शोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राहे विमलागणेश्वरी विशभानुसुते देवी आमी हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 निशाचरीत्थं व्यथितस्तनाभ्यसु व्यादाय केशं शरणं भुजावती प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहत वृत्रह इवा पत्निपः। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पुतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिरा हो। अब कई दिनों से प्रसंग श्रवण करके आ रहे हैं, कंस ने अपने राक्षस परामर्शदाता मंत्रियों से सलाह लेकर सभी बच्चों को मारने के लिए क्या पुतना नाम के राक्षस को बुला ली और उसको भेज दी कि सभी बच्चों को वध कर डालना, क्योंकि इनकी जो मित्र थे वा कंस के तथा कथित जो उपदेष्टा मंत्रियां थे इनकी यही सलाह था। जब जोगमाया देवी ने घोषणा कर दी आकाश में अष्टभुजा दुर्गा मूर्ति है प्रकट होकर कहे कि कंस तुझे मारने वाला और तो कहीं प्रकट हो चुका है, हैं? तो मुझे मारना चाहता लेकिन तुम्हारा तुमको मारने वाला कहीं ना कहीं प्रकट हो चुका है। इसलिए कंस ने निर्णय लिया, तो अपने मंत्रियों से फिर सलाह लेकर निर्णय लिया कि सब बच्चों को वध किया। लेकिन कंस ने केवल बालकों को मार, जो मेल चाइल्ड है बालकों को मारता था, मारने के लिए पुतना कहा था, बालिकाओं को नहीं है। लेडीज चाइल्ड जो है बच्चियों को मारना नहीं, बच्चों को मारना। ऐसा क्यों? ललित माधव नाटक की प्रारंभ से उस समय इसको वर्णन करते हैं कि ये जो अष्टभुजा दुर्गा मूर्ति तो कंस को कहे थे कि तुमको मारने वाला और कहीं प्रकट हो चुका है। इसके साथ साथ इन्होंने भविष्यवाणी ये भी की थी कि अन्य पुराणों से प्रतीत होता कि पारुषम कहते कि ये भी वो कहे थे कि मेरे से भी कई गुण से अधिक सुंदरी तथा कई गुण से अधिक योग शक्ति संपन्ना, मेरे से भी अधिक प्रभावशाली माने भगवान ने विष्णु माया बाप विष्णु की शक्तियां और भी कई जन्म ले चुके हैं बालिका के रूप में, और इनको यदि कोई शादी कर सकता है तो कृष्ण को भी वो पराजय करने में शक्ति प्राप्त कर सकता है, अपराजय हो सकता है। इसलिए जोगमाया देवी ने कहते कि कृष्ण तो बालक के रूप में कहीं ना कहीं जन्म ले चुके हैं, लेकिन इनके साथ साथ उनकी भी जो शक्तियां अल्लाह के लिए शक्तियां कहीं ना कहीं अन्य स्थान पर सब जन्म ले चुके हैं, और इनको जो शादी करेगी वो तो त्रिपुर विजयी कृष्ण को भी विजयी कर सकते हैं। तो इसलिए कंस ने यह निर्णय लिया था कि केवल मेल चाइल्ड पुतना को कहते कि जितनी मेल चाइल्ड है इनको मार डालना, और जो फीमेल चाइल्ड है इनको सब लाकर मुझे यहाँ लाकर मुझे अर्पण करना है, मेरे मुझे देना, फिर मैं इनको भविष्य में इनको लालन पालन इनसे बड़े होने के बाद मैं ही इनको शादी करूंगा, इसका प्लान ऐसा ही था। तो इसलिए वो पुतना राक्षस पुतना ने केवल बच्चों को मारता था, घूम घूम के बच्चों को मारता था, और इसकी असली रूप कैसा था, ओरिजिनल रूप यहाँ पर राक्षस रूप में कहा गया मूल रूप, लेकिन अन्य पुराण जैसे हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण आदि अन्य पुराण में प्रमुख पुराण में ये कहा गया कि प्रकृत में वो एक क्या बकी की रूप जैसे था, क्योंकि ये बकी अहो बकियन स्तन कालकूटम ये बकासुर की बहन थी कौन उतना, इसलिए उन सब पुराण पुराण ऐसे वर्णन आते थे कि वो भी ऐसे ही पक्षी स्वरूप थी, उसकी ओरिजिनल रूप जो थी पक्षी स्वरूप है, पक्षी के रूप में जो प्रथम पहले जो भाग वहां से आया भाग कर कहां से कंस मथुरा से कंस कहने पर जो आया आकाश में एक दिन अर्धरात्रि में, इस श्लोक में से पहला शब्द आ रहे कि क्या निशाचर, ये निशाचरी निशाचरी का अर्थ क्या जो रात्रि में विचरण करती है, ये राक्षसी ऐसे होते खेचरी उनको कहते हैं, तो बोल कहते हैं खेचरी कहते हैं, ये रात्रि में विचरण करते हैं अर्धरात्रि में, पुतना जब निकली वहां से मथुरा से गोकुल की गोकुल में भगवान जन्म को उस समय नंद भवन में थे, इसलिए अर्धरात्रि में ही निकली पक्षी के रूप में वहां से आई, आकाश में आकर गोकुल में उत्तर कर बहुत जोर से चिल्लाई, बहुत जोर से आवाज की सिंह की गर्जना जैसा, इसकी बात में अपने मन से बहुत जोर से हंसते हंसते फिर अपने स्वरूप को बदल गए। लेकिन प्रथम रूप में जिस रूप में वो आई थी, कई पुराण में इसके बनाने तो पक्षी रूप में थी, पक्षी रूप में आई थी और अर्धरात्रि में आकर यहाँ पर अपने को ड्रेसिंग पड़ा, अपने मेकअप ठीक से कर ली है जैसे चाहती थी सुन, और उसको ये कला पता था कि कैसे अपने भेष को बदलना, अन्य रूप धारण करना। पिछले श्लोक में आपके ऊपर जो ताकत में लिखे कि इसको ये भी कला पता था कि कैसे आकाश में उड़ना, बिना जान वाहन से, कोई एरोप्लेन के बिना या हेलीकॉप्टर के बिना या किसी अन्य यंत्र चालित विमान की हेला, वो अपने को स्वयं को ऐसे उड़ सकती इसमें आकाश में। तो बताते आज भी भारत में किसी को किसी प्रांत में ऐसा ही भी ऐसे ही तंत्र विद्या के माध्यम से कुछ कला इनको पता है, कुछ लोगों को ये भी ऐसा ही बड़े क्या है लकड़ी के साथ लकड़ी के साथ को सहारा करके उसी में से वो ऊपर उठ के जहाँ भी चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, कुछ खेल में यानी कुछ जरूरत नहीं, कुछ ही खेल में वहाँ पहुँच सकते हैं। ये आज भी ये कला लोग जानते हैं, मैंने कुछ लोग जानते हैं विशेष रूप में आसाम साइड में कामाख्या कामरूप कामाख्या उस साइड में कुछ तांत्रिक ऐसा ही आज भी है। आपको ऐसे तंत्र मंत्र पानी करके ऐसे छिड़क देगा तो आपको भेड़ बना सकता है, बांध देगा घर में है। तंत्र विद्या आज भी है तांत्रिक प्रभाव, लेकिन ये तांत्रिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? अभक्तों के ऊपर। भक्तों के ऊपर तंत्र विद्या काम नहीं करता, जहां पर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन होता है वहां पर प्रभु बदलने लगे, जहां पर लोग हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र की कीर्तन हो रहा है, भागवत के श्रवण हो रहा है, तो वहां पर तंत्र विद्या नया काम नहीं करते हैं। जहां पर श्रीमद भागवत की पारायण होता है भगवान स्वयं किस रूप में आए इस कलयुग में? भागवत के रूप में और हरिनाम के रूप में। ये दोनों की चर्चा जिस स्थान पर होता है वहां पर तंत्र विद्या के प्रभाव नहीं डालता है। तांत्रिक था भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में आप पढ़े विशेषण था तंत्र विद्या की प्रभाव भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर डालना चाहता था, बुरे क्या शक्ति को छोड़ता था भक्ति, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर भागवत को पढ़ रहे थे, भागवत की आपूर्ति करने के कारण वो कुछ नहीं, वो आया उनके पास आया वो वापस जाके फिर उसे जो छोड़ा था इनको वही तांत्रिक के ऊपर अकाउंट करने लगा है। तंत्र विद्या से यदि किसी को बुरा करने के लिए कोई कुछ शक्ति प्रयोग कर देता जी उसके पास में आकर यदि वो उसका पर प्रभाव नहीं डालता तो आपको हंस देगी, फिर जो छोड़ता उसी को फिर आक्रमण करेगा। उसे जहां पर हरे कृष्ण कीर्तन एक्चुअली कृष्ण ने ये बड़ा बुद्धू है, कौन कंस, कंस पुतना को जो भेजे थे अपने बच्चों को मारने के लिए, जहां पर भक्तों की बच्चा को मारने की शक्ति उसके पास नहीं थी, जहां पर हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है भागवत पारायण हो रहा है भक्ति कर रहे हैं तो उनकी बच्चों को मारने के लिए इसके पास शक्ति नहीं था। प्रैक्टिकली तो सब कंस के मित्रों की सब तक बच्चों को ही मारता था, कौन पुत्रा, जो लोग हरे कृष्ण कीर्तन नहीं करते थे भागवत पाठ नहीं करते थे भक्ति नहीं करते थे भगवान के शरण में नहीं थे और उनको बच्चों को मारने में ये बड़ा सक्षम थी, लेकिन भक्तों की बच्चा को मारने में उनके पास यही शक्ति नहीं था। इसलिए जीव गोस्वामी कहते कि वो बुद्धू था, कौन कंस प्रकृत में एक बुद्धू था, वो ऐसे बड़ा बुद्धिमान सोचता था अपने को, लेकिन वो अपने मित्रों की बच्चों को राक्षस के बच्चों को जो कंस के ही मित्र पक्ष के थे उन्हीं के बच्चों को मारते जा रहे थे उतना है। जहां पर हरे कृष्ण कीर्तन भागवत पर आए वहां तो उसके शक्ति काम नहीं करेगा, तंत्र शक्ति है। तो इसलिए ये भावना करते करते गोकुल में आ गए, पता लगा कि नंद भवन में लाला है, कृष्ण की बात तो कहीं सुनी होगी, जाकर पहुंचे। इसके पहले वहां पर भी गई थी वो, कहां जहां पर विंध्या चढ़ने थे, विंध्य पर्वत के विंध्याचल पर्वत की पुत्री के रूप में वहां पर जन्म ली थी, कौन राजरानी चंद्रावली है अष्टशक्ति, वहां पर जो अष्ट गोपी वहीं पर थे विशेष रूप में, राधा चंद्रावली और ललिता विशाखा पद्मा सव्या श्यामला भद्रा, ये अष्ट गोपी माने जाते हैं अष्ट मुख्य गोपी, क्योंकि विंध्याचल पर्वत में तपस्या करके भी ऐसे ही पुत्री चाहते था चाहता था कि विंध्याचल की जो महादेव की विजय भी कर सकता, जिनके इसको मने ऐसे लड़की को शादी देकर मुझे ऐसा ही जामाता प्राप्त हो, मेरे जामाता ने जैसे महादेव को भी विजय कर सकता, क्योंकि कॉम्पिटिशन था दोनों में, इसका हिमालय और विंध्याचल। तो हिमालय की एक पुत्री थी पार्वती, तो उसको एक हा माने पार्वती ऐसे ही पति मिला इनको, कौन भगवान शंकर जी पति रूप में प्राप्त किए। हिमालय बड़ा गर्व था कि महादेव को मैं अपना जामाते के रूप में प्राप्त किया। अब विंध्याचल को एक बार सामने वो बड़ा गर्व की कहा, तो विंध्याचल सर नहीं बड़ा अच्छा, मैं भी ऐसा ही एक जामाता प्राप्ति करूंगा जो तुम्हारा जामाता को भी परास्त कर सकता युद्ध में, उनके भी कॉम्पिटिशन होता। तो इसलिए उन्होंने तपस्या करके बहुत ब्रह्मा जी को बहुत तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए विंध्याचल। विंध्याचल जैसे कई बार ऐसे ऊपर उठ के वो बढ़ते जा रहा था, तो वो अगस्त्य मुनि ने उसको रुक दिए थे ऊपर से, और इससे भी बड़ा बनना चाहता था, किससे सुमेर को भी ऊपर को जाना टपना चाहता था। तो क्या करेगा, अभी तो कठोर तपस्या करने के कारण ब्रह्मा जी आकर वरदान दे दिए, तथास्तु तो सोचे भी नहीं, देखिए कठोर तपस्या के इतना तपस्या बल में है, स्वर्ग में भी तंक आ रहा है कुछ, ज्यादा तपस्या करने से उसी ताप स्वर्गलोक में भी जाता है, देवता लोग भी तंक हो जाते हैं। चला आकर तथास्तु कर दी, लेकिन उनका क्या बात चाहिए ना, वो कहा कि बस मुझे ऐसा ही का पुत्री, ऐसे पुत्री मुझे प्रदान कीजिए है, जैसे जो उसकी जो हस्बैंड बनेगा बाद, जो मेरा जामाता बनेगा वो जैसे महादेव विजयी बन सकते। इसलिए वरदान तथास्तु करने के बाद सोचे, अरे क्या बोल दिया इसको, महादेव को विजयी करने वाला जो व्यक्ति होगा तो वो फिर कौन हो सकता है, तो ही कृष्ण ही केवल महादेव को विजयी कर सकते, और तो कोई नहीं होगा। और कृष्ण किसको शादी करेंगे, राधारानी इनकी कैसे पुत्री रूप में आएगी, नहीं तो राधारानी तो नित्य पुत्री है, किसकी, वृषभानु जी की, पितिदा वृषभानु की पुत्री है, और उनकी जो अन्य शक्तियां सब आएंगी चंद्रावली की, वो चंद्रभानु की पुत्री है। अभी मैं क्या कह दिया इसकी, कैसे सफल होगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचने लगे। फिर राधारानी की कठोर तपस्या की, फिर बोले हुई इसको तो दे दिए, फिर उसकी बोर को सार्थक करने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर स्वयं तपस्या में बैठे हैं। राधारानी की तपस्या ध्यान करने लगे, राधा श्याम सुंदर प्रकट हुए, राधा गिरिधारी प्रकट होकर फिर कहे कि ठीक है, मुस्कुराने लगे, फिर ठीक है जो माया देवी को आदेश दिए, जो राधारानी बच्ची के रूप में भगवान की पत्नी कीर्तिदा के गर्भ में रही, फिर तुम जैसे बलराम को ट्रांसफर किया था कहाँ देवकी के गर्भ से रोहिणी गर्भ में, ऐसे इनको भी ट्रांसफर करा, राधारानी को कहाँ से कीर्तिदा के गर्भ से विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में ट्रांसफर किया। जैसे वो चंद्रावली भी थे, उसको कहते कि सारे केवल राधारानी नहीं, उसको भी ट्रांसफर किए थे, किसको चंद्रावली को भी ट्रांसफर होकर आए, गर्भ में थे और जन्म हो गए, बच्चे जन्म लिए, जब पुत्रों को पता चल गया बच्ची जन्म हुई, और कंस ने कह दी बच्ची को मारना नहीं, मेरे पास लेके आना, तो पुतना जाकर उनको भी पकड़े थे, वहां पर भी उनको पकड़ के भाग रहे थे। तब विंध्याचल के जो पुरोहित था और राक्षस को मारने का मंत्र जानता था, तो मैं मंत्र उच्चारण करके स्वाहा करके जग में आहुति डालने लगा, तो इसका शक्ति क्षीण होने लगा, पुतना की हाथ पैर कंपने लगे हैं, तो इसके हाथ से पहले चंद्रावली गिर गई है, चंद्रावली गिर गई कुंडीन नगर के वहाँ बिदर में, वहाँ नदी में गिर गए, तो वहां से फिर इनको प्राप्त करके कौन प्राप्त किया, कुंडीन नरेश भीष्म को प्राप्त करके फिर उनकी पुत्री बनकर रहे। तो बड़ा कहानी है, तो फिर जो आपको ललित माधु के प्रारंभ में पढ़ोगे इसको डिटेल बता दें। और आधारणी और अन्य गोपियों तो ऐसे पुतला लेकर भाग रहे थे, लेकिन ब्रज में आते ही, ब्रज के ऊपर आते ही सब एक एक करके हाथ से गिरने लगे, जमुना में गिर गई विशाखा और आधारणी भी है। तो इसलिए बात में पूर्णवासी कह रही कि मैं फिर आधारणी को पानी से उठाकर, तो ये सब अष्टकन्या को उठाकर अलग अलग गोपों को अपने पुत्री के रूप में पालन करने के लिए दे दी थी, और आधारणी को मिलाकर दे दी इनको, किसको, मुखरा जसोदा की धाई जो कि कीर्तिदा की माँ, उसको दे दी कि ये तुम्हारी ही पुत्री का लड़की है, कह के देते, तो इसलिए वो लालन पालन करने लगे। तो इस प्रकार राधारण के, तो ये होने के बाद फिर आया, पता चल गया कि इसको फिर कृष्ण ये नंद के लाला भी जन्म लिया इधर, इसलिए अर्धरात्रि में आई अपना फिर गोकुल में निर्जन स्थान में उतार कर अपने वेशभूषा पूरा बताओ कर हैं? एक ऐसे ही सुंदर स्त्री जैसे अप्सराई जैसे बात है, वो कन्या जैसे दिखाई पड़ती थी, नवजौवन संपन्न रूप धारण करके फिर प्रवेश की कहां? गोकुल में, नंद भवन में, जैसे वर्णना आया पहले सीधे प्रवेश कर गई कहां? जिस कमरे में सोए हुए थे भगवान को सुलाया गया। लेकिन कुछ शास्त्रों कहा गया कि ब्रह्म तो प्राणी और हरिवंश प्राणी अन्य कहते कि नहीं, वो छेकड़ में थे, नहीं किया इसको कहते बैल का गाड़ी, जैसे वो शकटासुर को बंद किए थे भगवान नीचे ही थे ना, शकट के नीचे सोए थे, उतना भी जो आए थे भगवान ने ऐसे शकट के नीचे थे, शकट के नीचे इनको सुलाए थे, सुलाए सोए थे नीचे ही, हाँ शकट के नीचे थे। और वहाँ पर वो श्लोक पूरा हरिवंश पुराण से उपट करके वो अलग प्रकार के कहा जाता कि शकट के नीचे आए तो उतना इनको स्तनपान करा रहे थे। लेकिन भागवत में से नहीं वर्णन नहीं है, भागवत में से आप स्वभाव करके आए कि पूरे डिटेल सीधे जगह हमने भगवान ने डायरेक्ट उसी कमरे में चले गए नंद भवन में, अपने अंत कक्ष में कमरे के अंदर भगवान ने सो रहे थे। ये सब झूठा नहीं, अन्य अन्य पुराण में जो होता है हम इसको झूठा नहीं कहेंगे क्योंकि श्रुति शास्त्र की निंदा नहीं कर, जैसे चौथा अपराध है, ये अन्य अन्य कल्प से लड़ा ऐसे ही थोड़ा सा परिवर्तन होता है, कभी पुतना का बद्ध तो होता है लेकिन अन्य अन्य कल्प में थोड़ा सा लीला में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन भागवत में जो लिखा गया उसके आधार पर हम देखें कि प्रकृत में वो अंत कक्षा में सोई हुई थी, सोई हुए थे भगवान कन्हैयालाल, वहां पर विश्राम कर रहे थे, पुतना बड़े सुंदर मातृवेश अपने को सजाई थी और कमल के फूल हाथ में घुमाते हुए जा रहे थे, तो गोपियां सोचे कि स्वयं की साक्षात कौन आ गई, लक्ष्मी वैकुंठ से पधारी है, देखने जा रहे अपने प्राणनाथ कृष्ण को, नारायण को देखने जा रहे, कोई बाधा नहीं थी इसके स्वरूप में। प्रभुपाद जी कहते कि ये प्रकृति में ऐसा नहीं, ये है कि प्रकृति में भगवान की जोगोजमाया शक्ति ऐसा ही कर रहे थे कि कोई इसको पहचान नहीं पाए। पुतना मरेंगे ना, पुतना कैसे मरेगी यदि ये पहले से रुक देंगे, तो कैसे उसको कैसे रुका पाए। लेकिन जीव गोस्वामी कहते कि नहीं, जब वो आ रहे थे पुतना प्रवेश कर रही थी, इसको माँ जशोदा रोहिणी ने रुक दिए, पूछे कहाँ जा रही, तो उन्होंने कहे कि कहाँ से आई, इसके एड्रेस मांगे, तो वो कहे कि मैं मथुरा की ब्राह्मण की पत्नी हूँ और तुम्हारे घर में नया बच्चा जन्म हुआ सुनकर मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं सभी बच्चे जिनके घर में नए बच्चे जन्म होते हैं तो आशीर्वाद देने के लिए आती, मैं एक ब्राह्मण पत्नी हूँ मथुरा नगर की, वहाँ से आई। आचार्य लोग अपने अपने मतामत लिखते हैं और उन्होंने आकर सीधे गई और वहाँ पर, लेकिन पुतना देखते ही पता लगा ले कि ये साधारण बच्चा नहीं है। तो पहले श्रवण कर चुके आप इस कथा, गोद में भगवान ने इसको देखते ही क्या किया, आँख बंद कर लिए, थोड़ा देखते ही आँख बंद कर लिए। क्यों आँख बंद कर लिए वो पहले सुने हैं कि हजारों मैंने कम से कम 20-25 अलग अलग कारण भिन्न भिन्न आचार्य ने अपना मत बता रहे हैं, उसको हमें यहाँ चर्चा नहीं क्योंकि श्लोक के साथ संबंध नहीं है। इसलिए भगवान ने आंख बंद करने के बाद आंख जब तो पुतना ने अपने गोद में ले ली, भगवान के बड़े अच्छा चले गए गोद में। लेकिन भगवान बड़े क्रोधित थे अंतकरण में क्योंकि कितनी राक्षस कितनी बच्चों को मारते मारते आई है, सोच रहे थे कि इतनी पहले इसी अवतार में सबसे पहला मारना है तो वध करना ठीक है, परित्राण है साधुना विनाश है, जब उसको राक्षस को वध करना के लिए काम है, लेकिन सबसे पहले जो वध करने जा रहा हूं इसको एक स्त्री को और माँ के रूप बनाकर आई है, बड़ा चिंतित हो। लेकिन फिर भी स्तनपान तो पहले से स्तन में क्या डाल के रखे थे, जहर डाल के रखे थे, अब भगवान के मुख में दे दी। भगवान ने बड़े गुस्से में पकड़ लिए इसके स्तन को पकड़े, इतने बच्चे भी थे लेकिन भगवान ही सब समय भगवान है, भगवान कोई आर्टिफिशियल नहीं बन सकता जिसका आजकल लोग सोच रहे हैं, कोई तपस्या करके कुछ योग सिद्धि प्राप्त करके अष्टांग योग सिद्धि प्राप्त करके अनिमा लघिमा प्राप्ति आदि सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन जाता है। भगवान किसी समय में भी किसी रूप में भी किसी अवस्था में भी भगवान रहते हैं। यदि वो जन्म हुए थे सिर्फ 6 दिन उम्र था लेकिन भगवत भगवान के साथ जो 6 ऐश्वर्य से जो पूर्ण थे सर्वशक्तिमान थे, इनके हाथ वो छोटे छोटे हाथ दिखाई पड़ता था बाहर में, लेकिन जो पुतना पुतना के स्तन को पकड़ लिए दोनों हाथ में, मुख तो लगा दिए, मुख लगा दोनों स्तन पकड़ ले, तो वो सुत में ऐसा कि जैसे वज्र जैसे कोई, मैंने इतनी कठिन उसको कष्ट हो रहा था किसको, पुतना कोई छोटे बच्चा, फिर पुतना के स्तन को मैंने ऐसे साथ बहुत अच्छे कठिन थे, लेकिन फिर भगवान जो पकड़ लिए इसको तो उसको और थोड़ा दबाने लगे इसको, बड़े कष्ट हुई उसको, जैसे श्लोक में कहते थे बड़े कष्ट हुआ। व्यथित स्तना यशु निशाचरी इत्थन, इस तरह वो निशाचरी जो राक्षस ने, भगवान ने जब इसके स्तन को पकड़ लिए दोनों हाथ में, व्यथित स्तना यशु, स्तन पर दबाव पड़ने से बड़े दुखी हो गए, हैं बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुई, इतनी है वो सहन नहीं कर पाए भगवान ने, वही भगवान की जो हाथ इतनी कोमल होती है, लेकिन राक्षसों के लिए वही हाथ भी वज्र के समान है। तब कर कमल भरे नखा अद्भुत सिंघम, भगवान के हाथ कमल जैसे है, लेकिन जब राक्षस के लिए वो वज्र के समान हो जाता है, और भगवान जब उसमें पड़े व्यथित होकर, व्यथित आस्तना यशु, यशु का अर्थात प्राण छोड़ दिया, व्यथित इतनी कष्ट अनुभव की पुतना जो दोनों हाथ में छोटे बच्चा ऐसे देखे, लेकिन स्तन को पकड़ लिए कोल से, और मुख स्तन मैं स्तनपान कर रहे थे, चूसने लगे तो इसके दूध के साथ इसके प्राण को भी चूस लिए भगवान, इतनी कष्ट हो रहा था उसको, अत्यंत व्यथित होकर व्यसु हो अर्थात प्राण त्याग दिया, व्यथिता स्तना व्यसु, प्राण को त्याग दिया, और व्यादाय केश चरण भुजावपी, व्यादाय के मुंह को फैलाकर बाल की गुच्छ बाल भी सब बिखर गए, हाथ पैर सब पूरा खोल गए, जब मतलब असली रूप उसका प्रकट हो गया, असली रूप उसका प्रकट हो गया, राक्षस रूप को प्रकट करते हुए प्रसार जे गोष्ठे निज रूप मत्थिता, प्रसार जे गोष्ठे वही घर में, मैंने वही जहां पर उसको स्तन को पान कर रहे थे उस घर के अंदर नहीं बने, उतना नहीं पूरे बालक को लेकर वो घर के अंदर से भाग के बाहर आ गए, भगवान में आकर आकाश में कुत्ते के साथ में वो बच्चे के साथ में आकाश उड़ने लगे, आकाश में जाते हुए प्रसार जी गोष्ठे निज रूप में अस्थिता, कहां पर गई वो गोष्ठे गोचर में, जहां पर गाय को घास खाने का जो स्थान है, प्रसार जी गोष्ठे निज रूप में अस्थिता, गोष्ठे उसे माने गोकुल के अंदर जो जहां पर घर मकान सब थे वहां पर नहीं, वहां पर नहीं गई, वहां से आगे जाकर गोष्ठे जहां पर गाय सब चरने के लिए था, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि प्रकृति में वो पुतना जहां पर गिरी थी वो कम से कहीं गार्डन था पुतना को जाकर जहां पर गिरी वो कम से का विशेष एरिया था, वहां पर एक गार्डन बना रखी थी कम से, उसमें से बहुत कई दिनों से फूल बहुत सुंदर क्या फल फूल फल सब होता था, फूल होता था, यहाँ से माला जाता था, फूल तोड़ के कम से के लिए माला बना जाता था, और फल सब जो है रिजर्व बहुत अच्छे फल ऑर्गेनिक फार्म था, वो फल दूसरे कहीं खा नहीं सकता था, वो फल केवल किसके लिए जाता था कम से कम, वो फ्रूट गार्डन फ्लावर गार्डन जो कम से कम प्रकृति में उसी के ऊपर जाकर पुतना गिर, पुतना गिर कर उसी कम से जो गार्डन को उसी को चुर चुर कर, कितने माइल तक था आगे बढ़ना माइल है 12 माइल, इतनी एरिया वो गार्डन जो था कम से कहीं इतनी विशाल गार्डन के ऊपर उसी के ऊपर गिरा, और सारे उसके जो फल फूल का वृक्ष सब चुर चुर हो गए, तो वहाँ हाथ पैर को फैलाते हुए कैसं चरण भुजावपी व्यादाय मुख खोलते हुए, व्यादाय मुख पूरा खोल गया उसके मुख है, चिल्ला रहे थे बहुत जोर से आवाज कर रहे थे, छोड़ दो मुझे छोड़ दो है चिल्ला रही थी, भगवान क्या सुने, भगवान सुनते नहीं छोटा हुआ, वो तो बड़े क्रोध में पकड़े भी हैं इसके स्तन को, और तो छोड़ दो बल्ले पर सुने नहीं, तो इसलिए आगे जब बड़े व्यथित होकर भगवान ने जो स्तन को पकड़कर दोनों हाथ से पकड़े थे, तो बड़े कष्ट के जब मृत्यु के समय कितनी यंत्रणा होता है आपको पता है, इतनी यंत्रणा नहीं होने से 10,000 बिच्छू एक साथ में काटने से जितनी कष्ट होता है इतने कष्ट नहीं होने से आसान से प्राण शरीर से छूटता नहीं है, इसलिए पुतना के प्राण जब शरीर से छूट गया आपको पता होना चाहिए कि कितनी कष्ट हुआ होगा, पुतना को कितनी कष्ट होने पर वो प्राण को छोड़ा है, कि प्राण त्याग दिया। केवल भगवान ने कुछ नहीं किया, केवल स्तन पकड़े थे, छोटे छोटे हाथ दिख रहे हैं, और उसको इतनी कष्ट हुई, इसलिए मुख खोलते हुए केश को बिखर गई, और बाहु इसके हाथ पैर से विस्तार करते हुए प्रसार की गोष्ठे को जाकर उसी फैलाकर गोष्ठे निज रूप में स्थित था। निज रूप में स्थित था, इसके ऊपर भिन्न भिन्न आचार्य भिन्न कमेंट्री करते हैं कि निज रूप अस्थिता क्या है, इसका अर्थ क्या है। शायद दोस्तों प्रभुपाद ने लिखे कि बस क्या अपने ओरिजिनल राक्षस रूप में पकड़ होकर गिरे, उसमें उसकी जैसे आयतन था कि 12 माइल एरिया को कवर करके गिर पड़ी हुई, ओरिजिनल राक्षसी रूप उसकी ओरिजिनल थी है इसी रूप में। और ऐसा क्यों प्रकट हो गया, ऐसा ही राक्षसी के रूप में क्यों गिर पड़ा, अपने रूप को क्यों प्रकट किया। श्रीधर स्वामी कहते कि प्रकृति में मृत्यु के समय में सभी को अपना पाप को खोल देना चाहिए, जो अपना जो कुछ पाप जीवन काल में किया था, जो उसके जो छुप की कुछ गुप्त भाव से छुपा किसी रूप में ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपा करके हम कभी कभी इधर से झूठ मूठ जो कुछ पाप करते हैं, मृत्यु के समय में इसको सब खोल देना चाहिए। यदि पाप को मृत्यु के समय में नहीं खोलेगा फिर अगला जन्म में भोगना पड़ेगा, उतना तो और भोगना नहीं था, भगवान के हाथ में मर रहे तो उसको कहाँ जाना, भगवान के धाम में जाने ही। तो इसलिए वो सब कुछ अपना जो पाप है उसको सब खोल दी, मैं कौन हूँ। मृत्यु के पहले व मृत्यु के जब कम से कम मृत्यु के समय में व्यक्ति जीवन काल में जितने जो कुछ पाप किया है, बुरा कर्म किया है, इसको सारा खोल देना चाहिए है? इसको बोल देना चाहिए, सारे बोल दे मैं इसे क्या क्या किया हूँ, क्या क्या काम किया है, कि बुरा काम किया है, जो पाप किया है, अपना ओरिजिनल स्वरूप को खोल देना चाहिए मृत्यु के समय में। यदि इसको नहीं खोलोगे, छुपा के रखोगे, फिर अगला जन्म में इसको भोगना पड़ेगा। उतना तो अगला जन्म नहीं लेना है, सीधा इसको जाना ही, भगवान के हाथ में मर रहा है, भाई पोत में जाएगा, गंगा दयालु शरण भगवान के हाथ में मर रहा हो तो जाएगी। इसलिए मृत्यु के समय में इसको सारे पाप खोल दी कि मैं हूं कौन, देखो ओरिजिनल स्वरूप मेरा देखो, जो पाप मेरे ओरिजिनल जो इसका राक्षसी रूप को प्रकट कर दी। प्रभुपाद जी लगते कि ये भी है कि कोई व्यक्ति कितनी बड़ा योग शक्ति को हासिल करें, सिद्धियां करके ही बहुत तपस्या करके जो योग शक्ति योग सिद्धियां को प्राप्त करके रखा है, लेकिन मृत्यु के साथ साथ ये सारे योग शक्ति उसका समाप्त हो जाता है। कोई कितनी भी तपस्या करके योग शक्ति हासिल किया है, लेकिन अणिमा लघिमा प्राप्ति आदि कितने भी कुछ किया, लेकिन जब शरीर त्याग जाए, शरीर छूट जाएगा, तो उसे शरीर छूटने के साथ साथ उसको सारे योग शक्ति समाप्त हो जाते हैं, सारी सिद्धियां समाप्त हो जाते हैं है? तो इसलिए पुतना रखी जो शरीर छूट गई तो उसका सारे योग सिद्धि समाप्त हो गई। इसलिए ओरिजिनल रूप में जो सुंदर स्त्री बनी थी, योग शक्ति के माध्यम से योग शक्ति समाप्त हो गई, तो ओरिजिनल मूल रूप में राक्षस रूप में गिर पड़ी। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि निज रूप में स्थित, अर्थात निज रूप का तो उल्लू को रूप है, वो कहते हैं कि निज रूप उसका उल्लू को रूप में है, तो उल्लू है OWL आउल, आउल के रूप जैसे उतना की ऐसा ही स्वरूप था, उल्लू के माने उल्लू को रूप है, जीव गोस्वामी कहते हैं उल्लू को रूप है, निज रूप में स्थित अर्थात उल्लू को रूप है, वो अपने रूप को जो प्रकट किया उल्लू को, मैंने उसकी जो मुख ऐसे ही थी, कैसे उल्लू का मुख ठीक मनुष्य का मुख जैसे देखते हैं, देखे ना उल्लू का, उल्लू देखे पक्षी है लेकिन ऐसे बैठे हुए थे, लेकिन मुख कैसे दिखाई पड़ती, इसका मुख जो देखोगे ठीक मनुष्य का मुख जैसे देखते हैं, लक्ष्मी का वाहन कहते उल्लू को। तो जे वो समय कहते प्रकृति में इसकी ओरिजिनल रूप जो निज रूप में स्थित अर्थ है, इसको उल्लू का रूप है ना, और उल्लू का रूप का धर्म माने इसके जो ओरिजिनल रूप जब प्रकट हो गई उसके मुख ऐसे ही थे, उल्लू के मुख जैसे, उल्लू की मुख जैसे थे। हो सकता कि जो अन्य प्राण में कहा गया कि पक्षी माने वो पुतना की बकिया बकासुर की बहन होने के कारण बकासुर जैसे कि बकी का कैसे कैसे रूप था, उसका बगुला के रूप था, ये भी ऐसे पक्षी रूप होगी, लेकिन वो ये पक्षी कैसे थे ना, उल्लू का रूप है ना, उल्लू के जैसा, उल्लू का मुख मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते थे, लेकिन पक्षी भी थे और मुख मनुष्य जैसे, ऐसा जीव गोस्वामी अपने कमेंट्री मैंने लिख रहे कि तो निज रूप में अस्थिता का अर्थ उल्लू का रूप है, उल्लू का रूप ऐसे प्रकट करके ही वो गिर पड़े। प्रसार्य गोष्ठे में जो रूपमा स्थिता अपने उस मूल रूप को प्रकटित करते हुए आसुरी रूप में स्थित है, आसुरी रूप मूल जो राक्षसी रूप, चाहे राक्षसी हो लेकिन इतनी विशाल थी, कितनी विशाल, कितनी जगह पर फैल गई, 12 माइल इतनी एरिया को कवर कर। तो ये ओरिजिनल रूप उसका होने पर वो जो चलती थी तो कितना होगा, तो इतना तो खड़ा होते तो उसका सिर कितना ऊपर जाता होगा, 12 माइल ऊपर ऐसा हो सकता है। जो मथुरा में रहते थे उतना तो कंस के सामने आते थे, कोई कंस बुलाते थे तो आते थे, तो उसमें इतना विशाल रूप लेकर आते थे, इतने विशाल रूप लेकर आए आती होगी कंस के सामने, कंस बोला एक पुतना को, पुतना कैसे जब आई तो कंस के सामने तो इसे 12 माइल ऊंचा इतने बड़े रूप राक्षस रूप लेकर आए, हैं रूप बदल देती। तो जो भी है यहाँ पर भिन्न 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 आचार्य अपने मता निज रूप वास्तव है, इसका पर बहुत सभी आचार्य अपने अपने मता जीव गोस्वामी चक्रवर्ती पाद क्या सिद्धर स्वामी सब अपने अपने मत देते हैं निज रूप मास्तिक है। ये निज रूप क्या था, उतना की निज रूप को धारण प्रकट करते हुए गिर पड़े हैं, ये निज रूप रखे बने, लेकिन सब कहते राक्षसी का रूप था ये, लेकिन राक्षसी रूप जो था कैसे था, कोई कहते पक्षी का रूप था, कोई उल्लू का रूप है ना, कोई है जो उसे कहे उल्लू का रूप था, कहीं कहते कि नहीं राक्षसी के रूप था, विकार विशाल राक्षसी, आगे कहे गए उसके दांत कहते बड़े बड़े थे, सो आगे वर्णन हो गए आस्ते आस्ते। तभी आगे इसको उपमा दी जा रही कि लास्ट लाइन में वज्राहत द्वित्र इवा इव अपतत निप, इस उपमा दी गई जो पुतना मरकर गिर पड़ी जमुना के ने जमीन के ऊपर, इतना विशाल गाय को पूरे चूर चूर कर दिए, इतने सारे वृक्ष सब इसके शरीर में दब गए, सब शरीर जो पुतना गिरी थे सारे वृक्ष चूर चूर हो गए, उनके ऊपर गिर पड़ी। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे इंद्र ने जो वज्र निक्षेप किया इसके शरीर के ऊपर, पुत्रासुर के शरीर के ऊपर वज्र निक्षेप किया, तो उन्होंने भी ऐसे ही भयंकर रूप को अपने स्वरूप को व्यक्त करते विशाल राक्षस के रूप में जमीन पर गिर पड़ा था। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जब पुतना भगवान स्पर्ण, यहाँ पर वज्रपात में कोई इंद्र आकर वज्र नहीं चलाया था अपना शरीर में, केवल भगवान ने उनकी पुतना के दोनों स्तन को पकड़ के कठोरता से पकड़कर मुख लगाकर उसके प्राणदाय को चूस लिया स्तन से, केवल ऐसे भगवान ने स्तन को पकड़ने से ही उतनी इतनी कष्ट होने लगा, उसके प्राणवायु निकल गई शरीर से, इतनी यंत्रणा असह्य यंत्रणा सहन नहीं कर पाई, और वो ऐसे ही चिल्लाते हुए गिर पड़ी, ऐसे लग रहे थे जैसे ही कोई इसके शरीर में वज्रपात किया, जैसे वृत्रासुर के शरीर में वज्रपात किए थे कौन इंद्र ने, इस प्रकार ऐसे बाह्य रूप से पतित हो रहा है कि कोई इंद्र होगी इसका पर वज्रपात कर दी, वज्र इंद्र के हाथ में रहता है, तो पुतना के शरीर में कोई वज्रपात कर दिया, तभी वो इतने अकस्मात गिर पड़ा, अकस्मात ऐसा ही आकाश से आते हुए बच्चे तो उसके स्तन पर भगवान नहीं थे, छाती पर थे, बक्से पर स्तन को पकड़ के रखे थे कभी भी, तो वही वो गिर पड़े, इतने बड़े एरिया को कवर करते हुए गिर पड़े। उतना राक्षसी थी जिसे योग शक्ति अपने तो मूल रूप को छुपा नहीं पाई, क्योंकि योग शक्ति मृत्यु के साथ साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पुतना राक्षसी ये किसकी रूप, ये पहला राक्षस भगवान मार रहे हैं, सबसे पहला राक्षसी को राक्षस को वध किए गोकुल में आने के बाद, और इसकी कृष्ण संगीता में भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले हमको किसका जरूरत पड़ता है, गुरु का, तो फॉल्स गुरु, ये फॉल्स गुरु का रिप्रेजेंट करती है पुतना। फॉल्स गुरु का अर्थ क्या हिंदी शब्द क्या है, मिथ्या गुरु, चिटिंग गुरु, ये क्योंकि माँ की भेष बनाकर आई थी लेकिन वो माँ नहीं थी, अंतकरण में पूरा कुभावना भरा था कि उसको से जान से मारेंगे, लेकिन ऊपर से वो भेष बनाकर आई थी, माँ की भेष बनाकर रूप को बदलकर आई थी, इसलिए इनको इस प्रकार संसार में भी कई लोग गुरु की भेष धारण करके गुरु के गुरु अपने को ऊपर से बन जाते हैं गुरु, फॉल्स गुरु बनते हैं, क्योंकि पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा लेकर समाज में कुछ धन कमाएंगे, कुछ पद प्रतिष्ठा ख्याति बढ़ेगा, ऐसे ही भावना लेकर योग्यता न होने पर भी अपने भेष ऐसे धारण कर लेते हैं। कैसे? गुरु का भेष, आचार्य के भेष धारण करके बस लोगों को चीटिंग करते हैं। ये आध्यात्मिक जन्म बा गुरु रूप में भ्रमण कर लोगों को सो ऐसा ही जाकर बच्चों को सो बारे जो इनोसेंट है बस जो आध्यात्मिक जीवन में बच्चे हैं जो दीक्षा अभी शुरुआत करने भक्ति जा रहा है स्तनपान करना ढूंढ रहा है कि माँ के स्तनपान करेगा अर्थात गुरु की अन्वेषण में है, तो ऐसा ही लोग आकर इनको चीटिंग करते हैं। जैसे पुतना रखे से जैसे ऐसा ही लोग जो गुरु वेश धारण करके बैठने वाला व्यक्ति के पास में जाता और वो फिर चीटिंग गुरु और अन्य क्या कहते हैं लोभी गुरु और पापी चेला। ये तो एक तो बाहरी रूप से ऐसे ही कुछ लोग अपने को गुरु रूप में वेशभूषा धारण करके रहते हैं, और कुछ लोग हैं दूसरे अंतकरण में उन्होंने सोचते हैं कि मन के द्वारा कि हम भौतिक ज्ञान को प्राप्त करके कर्मकांड और ज्ञानकांड की जो नॉलेज वेद इसको प्राप्त करके हम बहुत बड़ा हम ही असली आचार्य हैं। इनको ज्ञान के अहंकार रहता है, पता कथा प्रकृत में इनको पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति नहीं करते लेकिन ज्ञानकांड और कर्मकांड को आश्रय करके उसी ज्ञान के माध्यम से जो वैदिक ज्ञान प्राप्त किए उसी के माध्यम से वो अपने के गुरु समझते हैं। मन के माने मन में मन ऐसे विचार लेंगे हमसे और कोई ज़्यादा नहीं जानने वाला है, लेकिन प्रकृत में कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भांड अमृत बलिया जेव खाए नाना जनी सही फिरे कदर्जे भक्षण करे तारा जन्म अधपति चाहे। जैसे ज्ञानकांड कर्मकांड को असली जीवन का लक्ष्य समझते हुए स्वीकार कर लेगा तो उसके परिणाम क्या होता ये विष का भांड है, अमृत सोचकर इसको पीने जा रहा है पी लेता है लेकिन ये तो होता क्या विष के भांड है। यदि कृष्ण के सब यदि कृष्ण आश्रय में जो कृष्ण भावना में है तो बच पाएगा, नहीं तो ये जो कर्मकांड ज्ञानकांड रूपी विष के भांड को पुतना जैसे राक्षस स्थल पर लेपन करके आए थे और जो देखिए इनोसेंट है कितने इनोसेंट बच्चों के से मार मार के आए थे आध्यात्मिक, इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश करना चाहते इनोसेंट लोग को ये धोखा देते रहते हैं। लेकिन कोई यदि ऐसे व्यक्ति सच्चे कृष्ण के शरण में है सदगुरु के सच्चे सदगुरु की शरण में है प्रभुपाद जी से सदगुरु को प्राप्त कर चुका है असली ज्ञान को प्राप्त जानता है तो इसलिए पुतना राक्षस के समान जो ज्ञानकांड कर्मकांड को आश्रय करने वाले झूठे गुरु को वो ठुकरा सकता है। कृष्ण जैसे उसके स्तन को पान करके सब कुछ है छीन ले उसको मुक्ति प्रदान किए, इसी प्रकार जो स्कंद के भक्त हैं उन्होंने इसको पहचान सकते हैं ये कौन है जो प्रभुपाद जी किताब को पढ़ा है और जो आता है ऐसे झूठा ज्ञान अपने गर्व दिखा रहा है कि मैं बहुत जानता हूँ वैदिक वैद्य बहुत बड़े बड़े स्तोत्र गाते रहता है वैदिक श्लोकों को आवृत्ति करता है कर्मकांड बड़े बड़े यज्ञ करता है ज्ञान कर्मकांड ज्ञानकांड की व्याख्या करके आपको भ्रमित करना चाहता है, लेकिन इसको भी हमको पहचान सकते हैं जो कृष्ण के आश्रय में है हरे कृष्ण वो उसको पहचान सकते हैं ये पुतना है ये आई है हमको मारने के लिए लेकिन ये इसको समाप्त कर सकते हैं जो ज्ञान उन्होंने सदगुरु से प्राप्त किए हैं इसको समाप्त कर सकते हैं, इस प्रकार व्यक्तियों को नकार सकते हैं व उसको भी आर्गुमेंट युक्ति तर्क से परास्त करके फिर शामिल कर सकते हैं इसका है। इसलिए भक्ति उन्होंने ठाकुर कहते हैं सबसे पहला जो राक्षसी भगवान ने मारे ये पुतना ये प्रकृत में फॉल्स गुरु व झूठा गुरु माने जो अपने स्वरूप को छुपा कर ये संसार में भ्रमण करने वाले गुरु के साथ समान है। संसार में कई लोग ऐसे ही पुतना राक्षसी जैसे अपने वेश को बदला कर भ्रमण करते हैं और इनोसेंट जो जीवात्माओं को धोखा देते हैं जो है नहीं ऐसा ही प्रकृति में सदगुरु बनने का कोई योग्यता उनके पास में नहीं, लेकिन पूजा मान प्रतिष्ठा कुछ ऐसे लेने के लिए वह संसार में गुरु बनकर बैठते हैं। गुरु बनना कोई बड़ा बात नहीं, कोई भी गुरु बन सकते चला दो चाहे कुछ कई प्रकार के गुरु बन जाते हैं। और सर सरोम लोग वो कहानी कहते कि तो दो चोर गए थे एक बार चोरी करने और चोरी करके एक माने पशु चोरी कर रहे थे कि घर तो घुस नहीं पाए उसका घर के बाहर बंधा हुआ था एक गधा था और एक बकरी था दोनों खोल लिए बकरी को एक लेके पकड़ लिया, गधा को पकड़ लिया, बकरी तो भाग गया, बस कुछ लेके भाग गया, उसका मुख बांध दिया और उसको लेके भाग गया बकरी को। गधा को खींच खींच के ला रहा, गधा जा नहीं रहा था, क्या करेगा, खींच खींच के लेता था, रास्ते में और गया और देख रहे कि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, लोग आ जाएंगे भाई, क्या करोगे, कहाँ भागूंगा, गधा भी, गधा देखा कि वो रास्ता रोड साइड में ऐसे गाढ़ा बना हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ वृक्ष लगाने के लिए ऐसे गाढ़ा बनाए थे, तो गाढ़े के अंदर तुरंत इसको डाल दिया, मर गया देखा, गधे को डाल दिया, डालकर तुरंत ही आजू बाजू जो मिट्टी था सो मिट्टी उसका पर चढ़ा दिया, मिट्टी बंद करके उसके थोड़ा ऊंचा हो गया, थोड़ा ऊंचा आसन बन गया, आसन बन गया तो उसके ऊपर थोड़ा ऐसे लिप दिया गोबर, ऐसे लिप के ऊपर आसन बना दिया और उसी के ऊपर बैठ गया वो। बोला अभी क्या करो, कहीं पुलिस पुलिस आए तो कहें अभी तो अपना तुरंत ही के उसी के ऊपर आँख बंद करके बैठ गया, कोपिन धारण के, बोला दूसरा वस्त्र पहनने तो गड़बड़ी होगा, केवल एक कोपिन वो जो कपड़ा था उसको फाड़ के बस कोपिनी बना दिया और ऐसे विभूति कहीं लगा के बस मिट्टी मिट्टी तिलक लगा बस बैठ गया, उसका आँख बंद कर बैठ गया, डर गया था कभी सुबह होने वाला पकड़ेंगे कि लोग आगे ढूंढने के मैंने कहाँ गया, अब तो फिर लोग आके देखे कि भाई क्या है, कौन बैठा, नया बाबा कहाँ से आए, अब पूरा लंगोटी पहनकर बैठे और आँख बंद कर, तो लोग फिर स्वभाव है, पास में नदी में स्नान कर गया था तो सब पैसा उसके पास डालने लगे, हैं पैसे डालने वाले, और वो कहे कि मौन व्रत, मैं जो बात नहीं करता हूँ किससे, मैं मौन व्रत रखा हूँ, कोई जानता नहीं तो कुछ मुख खोलने से पकड़ा जाएगा, क्या बोल रहा है, तो मुख भी खोला बस, मौन व्रत है, मौनी बाबा को ज़्यादा लोग सम्मान देते, मौनी बाबा है देखो 12 साल से मौन रखा है, 20 साल से मौन रखा है, तो बोलते हैं हम मौन रखें, मौन व्रत बात नहीं करते, लोग को तो और सदा बढ़ गया है, तो आस्ते आस्ते आते थे, कोई कोई स्त्रियाँ से आने लगे, बस दक्षिणा मिलते रहा और लोग प्रणाम करते करते कई लोग बोले कि बाबा हम आपको आपका हमारे शिष्य हमको शिष्य बना दो, बाबा फिर आपने जो आता बोले मैं आप बात नहीं करते लिख देते, कोई जो भी आया ओम नमः हरि भी नहीं हरि ओम नमः शिवाय उसी मंत्र लिख देते थे, बोला जाओ इसको जब तो ऐसे बड़ा गुरु बन गया आस्ते आस्ते हैं। जो पहले बकरी चोरी किया साथ में गए थे चोरी करने के लिए, एक दिन देखा कि बाबा कहाँ पकड़ हो गए, चारों साइड से हजार हजार लोग आ रहे हैं बाबा जी के पास में, और बाबा जी का है ये होता ना कई लोग के सही झूठे अपने बाबा जी का मैंने गुरु बन जाता है, कोई भी कुछ आता है हाँ हाँ बोल हो जाएगा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, पर 100 लोग आ गया तो 100 लोग को ऐसे बोलते रहे सबको बोल दिए कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो कम से कम उसको तो 20 लोग का हो जाता काम, जिनका काम हो गया तो बोलेंगे बाबा का क्या बाबा का चमत्कार है, बस वो फिर प्रसाद करते रहे, फिर और लोग आते रहे। अब तो वो जो बकरी वाला चोर था बोला नया बाबा बोल रही 1000 लोग जा रहे, वो घूमते घूमते आए बाबा कैसे देखता हूँ, आगे दिखा रही ये तो वही है, साथ में गया था मेरा ये गधा लेके आया था, और गधा कहाँ गया, तो उसको देख कर वो तुरंत इंगित किया है, चलो बोला कि इसको अंदर ले जाओ, अंदर कमरा में बैठाओ, मेरे पर्सनल कमरा में बैठाओ, बात में मिलता हूँ, तो लोग ऐसा ही होते कुछ माने गुरु ऐसे संसार में कुछ गुरु ऐसे ही होते हैं, कुछ भी पता नहीं रहता है, कुछ भी नहीं जानते लेकिन ऐसा ही स्थिति में ऐसा ही बस किसी कारण से गुरु बन जाते हैं, उनको शास्त्र ही पता आता ना कुछ जाने बस तो ऐसे ही जो ठग गुरु है ऐसे पुतना की रिप्रेजेंट करते उसी के, इसलिए भक्त ठाकुर कहते हैं सबसे पहला जो राक्षस को भगवान ने मारे पुतना है राक्षस ही, ये उसी के रिप्रेजेंट करते फॉल्स गुरु है, वो है नहीं माँ वह है नहीं गुरु लेकिन अपने को प्रेजेंट करती है ऐसे कि मैं गुरु हूँ, मैं माँ के रूप में जैसे पुतना आई हूँ, इसलिए भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, पहचाने ठीक से कैसे पहचान सकते चलिए जो कृष्ण के आश्रय में रहेगा, कृष्ण कृपा पे गुरु में, जो आपने भगवान आपको गुरु नहीं दिया आप स्वयं अपने बुद्धि बड़ बुद्धि खर्चा करके कुछ चुनना चाहोगे तो ठग जाओगे हैं, पहले तो इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति में भक्ति माठक में सतर्क करा दे कि बद्ध जीव को कैसे गुरु चुनना है उसकी बड़ा सावधानी से सतर्कता से हैं शास्त्र साधु से देखना चाहिए, सिलेक्ट करें साधु शास्त्र के माध्यम से गुरु को चुना जाता है, और विशेष अपने कृष्ण के पास में प्रार्थना करने से कृष्ण यदि कृपा करके आपको गुरु देते हैं सदगुरु फिर वो सच्चे आप प्राप्त करोगे, नहीं तो आपके मन में भी कुछ ऐसा ही भावना है कर्मकांड ज्ञानकांड व योग सिद्धि प्राप्त करने का फिर आपको ऐसे ही गुरु मिल जाएगा, कैसे उतना जैसे जो सिद्धि जो को प्राप्त करने वाले, जो सिद्धि को प्राप्त करने वाले, कुछ चमत्कारी दिखाने वाले गुरु मिल जाएंगे और फिर आप भी भवसागर से पार नहीं हो पाओगे, ये भवबंधन में रह जाओगे। ठीक है, समय हो चुका है, कोई प्रश्न है किसकी? कोई समय अधिक हो गया। अच्छा, ये साधारण जनरल कमेंट जनरल बौद्ध जीवों के लिए है, जो मृत्यु के समय में है। शास्त्र में नहीं कह रहा, हमें शास्त्र कह रहा है, भागवत में कह रहा है कि इतनी यंत्रणा होते तभी जीवात्मा शरीर को त्यागता है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा करते थे कि जो मृत्यु के समय में, मृत्यु तो सभी को कबलित करेगा, प्रत्येक प्राणी को, लेकिन मृत्यु को यदि आप बिल्ली के साथ तुलना करते हैं, जो जनरल कॉमन पीपुल है वो चूहे के समान है, और जो भक्त होते हैं वो कैसे? बिल्ली के बच्चे जैसे हैं। काल अस्मिन, भगवान कहते हैं मैं ही काल के रूप में प्रकट होता हूँ, काल के रूप में सभी की परमाई को हरण कर लेता हूँ, मृत्यु के रूप में मैं ही प्रकट होता हूँ। लेकिन बिल्ली उसी मुख में जो चूहा को पकड़ते हैं, उसको मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको आसक्ति है संसार में, इसीलिए इसको यंत्रणा अनुभव होता है कि शरीर के प्रति उसकी आसक्ति है, शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। ये सब सब सोच के रखा, मैं मेरा सब रखा, ये त्याग की नहीं जाना चाहता, तो इसलिए इसको यंत्रणा अनुभव होता है। लेकिन भक्त तो ऐसे आसक्ति ऐसे ऑलरेडी मुक्त है, आसक्ति उसको है नहीं, वो जानता है कि मृत्यु मुझे आया तो ठीक है, मेरे माँ ने मुझे बिल्ली की बच्चे जैसे सोचती है, माँ मुझे ले जा रही है, यहाँ से कोई अच्छे जगह में ले जा रहे हैं, इसलिए यदि माँ के मुख में भी वो पकड़े, उसको बिल्ली पकड़ी है मुख में, दांत में वही दांत में पकड़ी है, लेकिन बच्चा नहीं डरती है, बच्चा तो बड़े हिलते डुलते हाथ को पैर को पैर है चलाते रहे, लेकिन वो चूहा को पकड़ती तो चूहा को कैसे यंत्रणा होता है? चूहा को मुख में पकड़ी है लेकिन जानती कि भी मरने वाला है तो उसको कष्ट होता है। इसलिए भक्तों की जन्म मृत्यु किसके हाथ से? भगवान के हाथ से। भक्त कहते कि जीवे र तब इच्छा मते जीवे र जन्म मर, समृद्धि निपात दुख सुख संघट, मिछे मायाबद्ध जीवो आशा पास फिरे तब इच्छा बिना किचु करते ना पारे। इसलिए जो समर्पित भक्त है, संपूर्ण अपने भगवान चरण में सब कुछ समर्पण करके रखा है, तो फिर वो उसकी दायित्व से स्वयं भगवान उसकी प्यार लेते हैं। उसके भक्तों को ऐसे जंतना हम देखें, कई भक्त बड़े मस्त मने आनंद से हरिनाम संकीर्तन के बीच में कीर्तन होते रहता है, तो उसको लेने के लिए आते कौन आते हैं? विष्णुदूत आएंगे, विष्णुदूत की वो क्यों भय होता है, लेकिन ये जो जमदूत इसको लेने आते कौन आएगा? जमदूत लेने आएगा। कारण जमदूत को देखकर उसके भय और बढ़ जाता है, चिल्लाते रहता है। तो इस प्रकार फर्क है, साधारण मनुष्य साधारण जीवात्मा शरीर त्यागना, बद्ध जीव के शरीर त्यागना और कोई भक्त का शरीर त्यागना, दोनों में अंतर है, यंत्रणाकारी फर्क है। आप सुख और दुख ये सारे मनों के मन के वृत्ति है, ये मन आप कहते कि तुम तो दुख ही भोग रहा है, क्योंकि हमारी आसक्ति के कारण हमके ये कष्ट अनुभव होता है, पहले से आसक्ति छोड़ चुका है तो संसार से तो उसको कष्ट नहीं अनुभव होता है। जिसको शरीर के साथ भी अटैचमेंट नहीं है, देह स्मृति नहीं जा संसार बंधन कहाँ था है। जिसको शरीर का भी स्मरण नहीं है कि मैं शरीर हूं, वो संपूर्ण रूप से जानता कि मैं आत्मा हूं, हम बोलते हैं लेकिन इसको अनुभव है, वो जानता कि मैं शरीर नहीं हूं। जिसके संपूर्ण अनुभव है जीवात्मा को, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर ये शरीर से जाने से अनुभव नहीं होने वाला। लेकिन जिसको आसक्ति है शरीर में है, तो छोड़ना नहीं चाहता, जब इसको छुड़ाया जा रहा है फिर उसको कष्ट होना। ठीक है, और कोई प्रश्न है? कोई कमेंट? कमलोचन तो आपके बनवा तो कोई प्रश्न उधर से उधर से उनको प्रश्न है, माता जी की तरफ से।
आज शाम को ठीक 7:30 बजे सभी
हरे कृष्णा
महाराज जी के भंडारण से महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज अर्थम प्रातः भी श्रीमद भागवत सत्र सर्वदा सरस्वती महाराज इधर सरस्वती महाराज की।